सो आज का जो स्थल है वो एल्डर्स और डीकन के बारे में, पिछली बार हमने देखा था पुरुषों की कलीसिया में क्या जिम्मेदारी और बहनों की क्या जिम्मेदारी है, किस प्रकार से क्या बहनें पुलपिट पे खड़े होकर सेवा कर सकती हैं। हमने इस बात को देखा, बाइबल इस बात का इनकार करती है। अभी पिछले दिनों में यहाँ पर 3 दिन की मीटिंग थी और कई लीडर्स यहाँ पर, करीब 100 लीडर्स यहाँ पर लगभग थे, और इसी विषय को कुछ मैं समझा रहा था। तो भाई कई लोगों के लिए समझना मुश्किल होता है, लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन को क्रम से पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, तो हम बातों को देखते हैं। बाइबल क्या कहती है, लोग क्या कहते हैं, लोगों ने क्या योजना बना रखी है, क्या किस रीति से, वो अलग विचार है, लेकिन परमेश्वर का वचन में क्या कहता है। हमें बार बार परमेश्वर के वचन के पास आना है और वचन से सीखना है। इस बात को बार बार ध्यान से देखते हैं, ठीक है। सो आज हम थोड़ा सा ध्यान लगाना चाहेंगे तीसरे अध्याय पर, पहला तिमोथियुस के तीसरे अध्याय पर, पहला तिमोथियुस का तीसरा, कलीसिया के सेवकों का जीवन कलीसिया में और परिवार में एवं समाज में। अगर मैं इस तरह को स्तर करूं, कलीसिया के सेवकों का जीवन या साक्षी, जो आज का थीम है, कलीसिया के सेवकों का जीवन या साक्षी, गवाही, लीडर्स ऑफ द चर्च देयर लाइफ विटनेस इन फैमिली इन द चर्च एंड इन सोसाइटी, इन द सोसाइटी। एक कलीसिया के जो सेवक हैं, चाहे वो एल्डर हैं, चाहे डीकन हैं, चाहे पास्टर हैं, उनके जीवन किस प्रकार का होना चाहिए, उनकी जीवन की साक्षी कैसे होनी चाहिए, उनके जीवन के क्या गुण होने चाहिए, ये क्या विशेषता होनी चाहिए, क्या सभी लोग कलीसिया के संचालक हो सकते हैं, नहीं, किस प्रकार के अगुओं पर आज हम भरोसा रख सकते हैं, किस प्रकार के अगुओं की अगुवाई को हम स्वीकार करते हैं, किस प्रकार के अगुओं का हम अनुसरण करते हैं, ये बहुत मुख्य बात है, ये सच है। आज बहुत सारी कलीसियाएं हैं, बहुत सारे लोग पास्टर हैं, पास्टर शब्द बहुत हल्का हो चुका है, बहुत हल्का हो चुका है, सब अपना परिचय पास्टर के रूप में देना चाहते हैं, ठीक है, हम उस पर टिप्पणी नहीं करते, लेकिन एक गंभीर बात है और हमें गंभीरता से उसको लेना है, और सच में परमेश्वर का वचन गंभीर है। यदि मैं स्वयं पास्टर एल्डर या डीकन हूं, तो मेरे स्वयं में क्या, मेरे जीवन में क्या गुण पाए जाने चाहिए, क्या विशेषता पाने चाहिए, परमेश्वर क्या सिखाता है, ये सच है। तिमोथियुस को पौलुस लिखते हुए कहता है, तिमोथियुस, पहला तिमोथियुस तीसरा अध्याय पहले पद में, ये कथन सत्य है, ये सत्य है। क्या सत्य है? कि यदि कोई अध्यक्ष या एल्डर बनने की अभिलाष रखता है तो वो अभिलाष रखता है। ये सत्य है कि अगर एक व्यक्ति के अंदर ये लालसा, ये अभिलाषा है कि वो कलीसिया का वो एल्डर बन जाए, कलीसिया का डीकन मिल जाए, कलीसिया का पास्टर बन जाए, कलीसिया में उसको सेवा का भाग दिया जाए, ये अच्छी अभिलाषा है, वो कहता है ये अभिलाषा रखता है, तो ये भला कार्य करने की इच्छा रखता है, भला कार्य कर, बुरा नहीं है इस बात को सोचना कि मैं कलीसिया में रह करके एक एल्डर बन करके, एक डीकन बन करके कलीसिया में सेवा करूं, मुझे अवसर मिले, ये अच्छी बात है, बुरा नहीं है, लेकिन इतना ही काफी नहीं है। उसके साथ आगे ये है कि उस व्यक्ति को, उस जन को ये बात को समझना है कि क्या ये उसका अन्य बातें जो आगे पौलुस वर्णन कर रहा है वो उसके जीवन में पाई जाती हैं। और जब मैं एक सेवक के रूप में यहां पर खड़ा हूं, परमेश्वर ने अपने अनुग्रह को दिया है, तो मैं अपने जीवन के बारे में सोचता हूं, क्या ये चीजें मेरे जीवन में है, जो इतने साल से अगर मैं सेवा कर रहा हूं और प्रभु ने सेवा दी है, तो क्या ये मेरे जीवन में है, और क्या ये मेरे जीवन में गुण जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं, जो अवगुण है वो घटते और कम होते चले आ रहे हैं और गुण बढ़ते चले जा रहे हैं। ये मसीह जीवन की सेवकाई का रहस्य है। हर एक व्यक्ति के अंदर जरूर निर्बलताएं होती हैं और निर्बलताओं पर विजय पाना हमारा हमारा कर्तव्य, हमारा अधिकार है और हमारे परमेश्वर की चाहना है। जब हम तिमोथियुस को शुरू करते हैं तो तिमोथियुस बहुत अच्छी रीति से एक दो बातों कहता है। वो इस बात को जोर देता है कि वो कलीसिया, जिस कलीसिया में, जो सुसमाचार केंद्रित कलीसिया है, जिस कलीसिया में सुसमाचार को, गॉस्पल को स्थान दिया जाता है, जिस सुसमाचार में परमेश्वर के वचन को स्थान दिया जाता है, वो कलीसिया परमेश्वर की दृष्टि में ग्रहण योग्य कलीसिया है। और यदि कलीसिया तो बहुत है, लेकिन उन कलीसियों में यदि सुसमाचार का स्थान नहीं है, प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान का, कि प्रभु यीशु मसीह संसार परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है, सबने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है, जो प्राणी पाप करे वो निश्चय मर जाएगा। परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है, हम अपने धर्म कर्म और अपनी रीति विधियों के द्वारा पाप से छुटकारा नहीं पा सकते। अगर हम पाप से छुटकारा पा सकते होते तो व्यवस्था भली थी, लेकिन व्यवस्था के द्वारा या कर्मों के द्वारा या विधियों को पालन करने द्वारा या रीतियों को पालन के द्वारा, उन सब कुछ को पालन के द्वारा हम पाप से छुटकारा नहीं पा गए, या मेरे माता पिता अगर क्रिश्चियन थे तो उस परिवार में जन्म लेने के कारण मैं क्रिश्चियन नहीं बन गया। परमेश्वर का वचन स्पष्ट रूप से बताता है। और आशा यही थी कि एक व्यक्तिगत रीति से उस प्रभु यीशु मसीह के उस महान कार्य को स्मरण किया जाए, उस पर विचार किया जाए, उस पर विश्वास किया जाए, उसको ग्रहण किया जाए। और वो कार्य क्या था कि जब परमेश्वर ने देखा मनुष्य पाप के कारण नाश हो रहा है, उस पर दंड की आज्ञा लगी है, तो उसने इस संसार में अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेज दिया, जिसका पौलुस आगे चल के वर्णन करता है। उसने अपने इकलौते पुत्र को भेज दिया ताकि वो मेरे और आपके लिए क्रूस पर बलिदान हो, मारा जाए, गाड़ा जाए, तीसरे दिन जी उठे। और मैं उस सुसमाचार पर कि प्रभु यीशु मसीह पापियों के लिए संसार में आया और उस पापियों में सबसे बड़ा पापी मैं हूं, जैसे पौलुस कहता है। जब मैं और आप व्यक्तिगत रीति से इस बात को स्वीकार करते हैं, इस बात का अंगीकार करते हैं, इस बात को मानने के तैयार होते हैं कि हां मैं पापी हूं और मुझे उद्धार की आवश्यकता है, मैं पापी हूं, मुझे पाप क्षमा की आवश्यकता है, जब तक मेरे अंदर ये कायलता नहीं आता, ये कन्विक्शन नहीं आता, जब तक मैं उस कन्विक्शन के बाद मैं रिपेंट करने तैयार नहीं होता, पश्चाताप करने तैयार नहीं होता, मेरे उद्धार की कोई आशा नहीं होती। तो कन्विक्शन का आना जरूरी है, कायलता का आना जरूरी है, रिपेंटेंस का होना जरूरी है, फिर फॉरगिवनेस को पाना जरूरी है, उसके बाद क्षमा को पाना बहुत जरूरी है। और मैं कहने तैयार होता हूं कि प्रभु यीशु मसीह मैं आपके दृष्टि में पापी हूं, मेरे धर्म के कार्य, मेरी रीति विधियां मुझे पाप से छुटकारा नहीं दे सकती, और अगर मुझे आपके राज में कोई प्रवेश कर सकता है तो आपका इकलौता पुत्र यीशु मसीह, जिस पर मैं पूरे मन से विश्वास करता हूं, अपने पापों से क्षमा मांगता हूं और आपको अपने जीवन का प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार करता हूं। और तब विश्वास करने बाद मैं इस बात की आज्ञा का पालन करने तैयार हूं कि तब उसके विश्वास करने बाद मैं बपतिस्मा लेने तैयार होता हूं। और बपतिस्मा के लेने के द्वारा मैं धर्मी नहीं बनता, बपतिस्मा लेने द्वारा मैं छुटकारा नहीं पाता, लेकिन छुटकारा पाने या विश्वास में आने के बाद एक साक्षी के रूप में बपतिस्मा लेता हूं और तब मैं कलीसिया में जुड़ जाता हूं। कलीसिया जो परिवार है उस परिवार का अंग बन जाता हूं, कलीसिया का मैं भागी बन जाता हूं। यह परमेश्वर के वचन के सिद्धांत है और यही पौलुस समझाना चाह रहा है। अब जब मैं कलीसिया में आ गया और जब कलीसिया परिवार में एक परिवार हो गई, तो अब वो कलीसिया में परिवार में विश्वासियों का जीवन क्या होना है और उनके सेवकों का जीवन क्या होना है। सो आज पौलुस जो वर्णन कर रहा है वो उन गुणों की बात कर रहा है। ठीक है, उसका लक्ष्य, उसका एम प्रभु के सेवकों के पर है, लेकिन प्रभु के सेवकों के साथ साथ प्रभु के सेवकों की पत्नी के ऊपर भी है। इस अध्याय में केवल एक पद है, लेकिन उन बहनों के लिए भी है जो चाहे सेवक की पत्नियां हों, चाहे कलीसिया में सेवा में सहयोग कर रही हों, उनके लिए भी हम। तो आज 1 से 16 पद तक कोशिश करेंगे, हम कहां तक जाने पाएंगे, लेकिन पहले मैं पहले पद से लेकर 7 पद तक पढ़ना चाहूंगा। यह कथन सत्य है कि यदि कोई अध्यक्ष बनने की अभिलाष रखता है तो वह एक भला कार्य करने की इच्छा रखता है, इसलिए अवश्य है कि अध्यक्ष निर्दोष हो, एक ही पत्नी का पति हो, सेमी समझदार, सम्मानीय, अतिथि सत्कार करने वाला और शिक्षा देने में निपुण हो, शराबी या मारपीट करने वाला नहीं ना हो, परंतु नम्र हो, झगड़ालू और धन का लोभी ना हो, वो घर का अच्छा प्रबंध करता हो, अपने बाल बच्चों को ऐसे अनुशासन में रखता हो कि वे उसका सम्मान करें। यदि कोई व्यक्ति अपने घर का प्रबंध करना नहीं जानता तो वो परमेश्वर की कलीसिया की देखभाल कैसे करेगा। वो कोई नया चेला ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि अहंकार में पड़कर शैतान के सामने दंड का भागी हो जाए, कलीसिया के बाहर के लोगों में सुनामी हो, कहीं ऐसा ना हो कि किसी दोष में पड़कर वो शैतान के फंदे में फंस जाए। तो दो चीजें यहां पर, तीन बातें हैं कलीसिया के अंदर, पहली बात परिवार के अंदर, फिर कलीसिया के अंदर, फिर समाज के अंदर, और उसमें उसके तीन अलग अलग इन तीन पदों में हम तीन अलग अलग गुण को देख सकते हैं। आत्मिक गुण क्या होने चाहिए उसके साथ, ना केवल आत्मिक गुण क्या है, फिर उसके साथ साथ सामाजिक गुण उसके क्या होने चाहिए, नैतिक गुण उसके क्या होने चाहिए। आत्मिक गुण, नैतिक गुण, सामाजिक गुण, स्पिरिचुअल क्वालिटी, मॉरल क्वालिटीज, सोशल क्वालिटी, ये तीन योग्यताएं हम इन स्थल में देखते हैं। और वही चीज डीकन में भी दिखाई देती है, डीकन में जो धर्म सेवक है उसको मैं भी समझाऊंगा, वही चीज उनके अंदर भी दिखाई देती है। केवल एक फर्क है डीकन में, एक फर्क यह है दोनों में, एल्डर्स में और डीकन्स में एक फर्क यह है, एल्डर्स जो हैं उनकी विशेष जिम्मेदारी कलीसिया में शिक्षा देने की है, उनको उनको प्रीच करना होना है, उनको टीच करना होना है, उनको लीड करना होना है, उनको सर्व करना है, उनको केयर करना है। ये 5 चीजें एक एल्डर्स के अंदर होनी चाहिए। ही मस्ट बी गुड प्रीचर, वो एक अच्छा प्रचारक होना चाहिए. ही मस्ट बी गुड टीचर, एक अच्छा टीचर और शिक्षक होना चाहिए. ही मस्ट बी गुड लीडर, उसको मतलब लीड करने वाला चाहिए. उसको एक सर्वर होना चाहिए, सर्व करने के लिए तैयार होना चाहिए, केयर करना चाहिए. मस्ट बी गुड केयर टेकर होना चाहिए. सो ये थी पांच चीजें उसके अंदर होनी चाहिए जो आदर्श. अब जब ये आप देखते हैं, जब यह बात को सुनते हैं, तो ये मुझको अपने बारे में देखना है, आप जो भाई लोग यहां पर हैं आपके अपने आप बारे में सोचना है, और यदि आपके अंदर इच्छा है तो आपको अपने आप को उस रीति से तैयार करना है. और यही चीजें हम बाहर दूसरी कलीसियाओं में भी देख सकते हैं सब कुछ. जब हम आरंभ की बात देखते हैं कलीसिया, थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करूंगा. सबसे पहले परमेश्वर ने प्रेरितों को चुना था. प्रेरित वो थे, अब नहीं है प्रेरित. इस समय प्रेरित नहीं है, मान के चलिए, इसको समझ लीजिए. जो लोग प्रेरित के बारे में बात करते हैं वो बाइबल के अनुसार नहीं है. प्रेरित अब नहीं, प्रेरित वो होते थे जिन्होंने यीशु मसीह को देखा था, यीशु मसीह को सुना था और यीशु मसीह से सीधे निर्देश पाया था. 12 चेलों के अलावा भी और भी अलग थे, जैसे पौलुस को परमेश्वर ने दर्शन दिया था, यीशु मसीह ने दर्शन दिया था. पौलुस को परमेश्वर ने विशेष रीति से प्रेरित करके चुना था. पौलुस को परमेश्वर ने विशेष निर्देश दिए थे. सो पौलुस प्रेरित था, बरनबास पौलुस था, और भी प्रेरित थे जो बाद में हम देखते हैं, जिनको प्रेरित काम के उसके 20 अध्याय में और 15 अध्याय में, इनमें हम उन प्रेरितों के लिस्ट को देखते हैं. प्रेरित काम 15 अध्याय, प्रेरित काम 20 अध्याय, उसमें हम देखते हैं. सो ये है, लेकिन यही प्रेरित आगे चल करके कलीसिया के प्राचीन कहलाए, कलीसिया के अगुए कहलाए. यही प्राचीन को आगे चल करके एल्डर नाम दिया गया, एक जिम्मेदारी दी गई, और एल्डर के साथ साथ डीकन्स भी उसी समय आरंभ हुए. अगर आप प्रेरित काम उसके 6 अध्याय में आएंगे, मैं उसमें ले जाऊं, दोनों चीज को समझाने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूं. प्रेरित काम उसका 6 अध्याय. अब यहां पर हम एल्डर्स और डीकन्स को देखते हैं सबसे पहले. अब वह कलीसिया बढ़ रही थी और कलीसिया में बढ़ते हुए कुछ वाद विवाद उत्पन्न हुआ था. और तब उसके बाद दूसरा पद, 12 ने चेलों की मंडली को बुलाकर कहा, हमारे लिए ये ठीक नहीं कि हम परमेश्वर के वचन को छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा करें. इसलिए ये भाइयों, हे भाइयों, अपने में से 7 सचरित्र पुरुषों को चुन लो जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो, कि हम इस कार्य का संचालन उनके हाथों में सौंप दें, परंतु हम तो स्वयं प्रार्थना और वचन की सेवा में लगे रहेंगे. ये एल्डर्स थे, ये प्राचीन थे, जिन्होंने कहा हम तो स्वयं प्रार्थना और परमेश्वर के वचन की सेवा में रहेंगे. हमारा काम वचन की शिक्षा देना है, हमारा काम वचन का प्रचार करना है. इसका मतलब ये नहीं कि डीकन्स भी वचन नहीं बांटते, इसका मतलब ये नहीं कि डीकन्स भी प्रचार नहीं करते, इसका मतलब ये नहीं, लेकिन मुख्यतः जिम्मेदारी को समझना है. और तब उसके बाद तब वो कहता है, ये बात समस्त मंडली को उचित जान पड़ी और तब उन्होंने 7 जनों को चुन लिया. ये डीकन्स थे, पहली बार इन डीकन्स को चुना गया, और ये वहां पर कलीसिया में रहकर उन विधवाओं की देखभाल कर रहे थे, उनके साथ सेवा कर रहे थे. तो वहां पर हम देखते हैं, और तब फिर हम आगे चल करके और बढ़ते चले आते हैं. तो कलीसिया में 2 मुख्य रोल हैं, जो स्थान है. पहला है एल्डर्स हैं, जो कलीसिया के अध्यक्ष, कलीसिया में अध्यक्ष नाम दिया गया है, पास्टर हो सकते हैं, अगुए हो सकते हैं, चरवाहे हो सकते हैं. उनकी मुख्य जिम्मेदारी है कि कलीसिया के लोगों को परमेश्वर के सुसमाचार को स्पष्ट रूप से समझाना है, सिखाना है, वचन को सिखाना है, और उनको इस कार्य में रात दिन मेहनत करनी है. एक अच्छा शिक्षक, एक अच्छा प्रचारक बिना परिश्रम करे वो नहीं हो सकता. उसको स्वयं वचन को सीखना है, तब उसको सिखाना है, ये कार्य उसके लिए करना है, और ये पाई जाती है. तो जो इस चीज के विलासिता है वो अच्छा काम करता है. पौलुस बहुत बार भले काम भले काम भले काम की सूची को स्मरण करता है. लेकिन आगे चल करके तब कुछ नैतिक जिम्मेदारियां हैं या आत्मिक जिम्मेदारी. जब हम नैतिक जिम्मेदारी को देखते हैं तो वो कहता है कि इसलिए अवश्य अध्यक्ष निर्दोष हो. ये स्पिरिचुअल क्वालिटी है, ये सच है, ये आत्मिक गुण है जो उसके अंदर है. इंग्लिश में कहा गया है ब्लेमलेस, लेकिन निर्दोष होना अनिवार्य है. और एक विश्वासी को जब प्रभु यीशु मसीह के पास आता है, आइए मेरे साथ निकालिए कुलुसियों उसका पहला अध्याय, और यहां पर पौलुस क्या कहता है, कुलुसियों चैप्टर 1:22, फिर भी उसने अपनी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुमसे मेल कर लिया कि तुम्हें अपने समक्ष पवित्र, निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे. क्या कर दिया उसने, उसने ये कर दिया, पवित्र, निष्कलंक और निर्दोष बनाकर तुम्हें उपस्थित करे. तब ये क्या, ये तब ही संभव है, यदि तुम सचमुच विश्वास में दृढ़ होकर स्थिर बने रहो और सुसमाचार की उस आशा को जिसे तुमने सुना है ना छोड़ो, जिसका प्रचार आकाश के नीचे कि समस्त शिष्य में किया गया और जिसमें पौलुस सेवक बना। ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, ये ठीक है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू को बहाया है, प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को बलिदान किया है, प्रभु यीशु मसीह ने मेरे पापों के लिए अपने आप को बलिदान किया और मैंने उस पर के पर विश्वास करके, आपने उस पर विश्वास करके, उसके लहू से छुटकारा पा करके हम निर्दोष बनाए गए हैं। लेकिन वो क्या कहता है, इस निर्दोष, ठीक है निर्दोष बनाए गए हैं, लेकिन हमें निरंतर उस निर्दोषता में बने रहना है और बढ़ते रहना है। ये कब होगा, जब हम प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को थामे रहेंगे और उसको अपने जीवन में क्रियाशील होने देंगे। सुसमाचार को सुनना, उस पर विश्वास करना, उसको ग्रहण करके, विश्वास करके यीशु मसीह का से उद्धार प्राप्त करके बपतिस्मा लेना के बाद वहां समाप्ति नहीं हो जाती कि अरे हमारा हमने उपार लिया, नहीं, वहां से तो गाड़ी आरंभ होती है, वहां से तो यात्रा आरंभ होती है। अब वो सुसमाचार को दिन प्रतिदिन मुझे और अधिक समझना है और अपने जीवन में लागू करना है। सुसमाचार केवल इतना है, लेकिन मसीह का पूरा जीवन है, संपूर्ण जीवन है, और मसीह के जीवन में हम उसकी सेवा को देखते हैं, उसके जीवन को देखते हैं, उसकी शिक्षाओं को देखते हैं, और वो शिक्षाएं हमारे जीवन में लागू होनी है। और जितना अधिक वो शिक्षाएं हमारे जीवन में लागू होती जाती हैं, उसका जीवन हमारे जीवन में लागू होता जाता है, हम उसमें आगे बढ़ते जाते हैं और परमेश्वर दिन प्रतिदिन हमें निर्दोषता में आगे बढ़ाता चला जाता है। और मेरे और आपके अंदर ये अभिलाषा होनी चाहिए, प्रभु ना कल मैंने और आपने मैंने उद्धार पा लिया, लेकिन मुझे दिन प्रतिदिन और आप निर्दोष बनाइए, पवित्र बनाइए, शुद्ध बनाइए, मैं आपकी आज्ञाओं को, आपके वचन को, आपके जीवन को, आपके स्वभाव को अपने ऊपर लेना चाहता हूं। और जब भी कोई ऐसी चीज आती है, मेरे को विश्वास के साथ नम्र होकर परमेश्वर के सामने अंगीकार करना चाहिए और कन्फेस करते हुए प्रार्थना करनी चाहिए, उससे क्षमा मांगनी चाहिए और उसके साथ आगे बढ़ना। तो सुसमाचार मेरे और आपके जीवन में क्रियाशील होना है, और इसलिए वो कहता है ये जो है वो निर्दोष हो, अर्थात जिसने यीशु मसीह के सुसमाचार पर विश्वास करके प्रभु से पापों की क्षमा को प्राप्त किया है और अब सुसमाचार उसके जीवन में कार्य रखता है और सुसमाचार के द्वारा उसका जीवन निरंतर आगे निर्दोषता में बढ़ता चला जा रहा है। वो ये कह रहा है, तो कौन अध्यक्ष हो सकता है, कौन पास्टर हो सकता है, कौन लीडर हो सकता है, कौन कलीसिया में सेवा करता है, जिसके अंदर यह अभिलाषा है। एल्डर बनने की अभिलाषा अच्छी बात है, डीकन बनने की अभिलाषा अच्छी बात है, लेकिन जिसके अंदर यह अभिलाषा है, हे प्रभु आप मुझे और अधिक निर्दोष बनाइए, जिसके अंदर यह परिश्रम है, जिसके अंदर यह प्रयास है, जिसके अंदर यह इच्छा है, जिसके अंदर यह कोशिश है, प्रभु आपका वचन मुझे निर्दोष बनाए। हम संसार में के बहुत सारी चीजों में खो जाते हैं और हम दिन भर सोचते हैं मैं ये कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं। मेरे पास मॉर्निंग में व्हाट्सएप में बहुत सारे बाइबल के पद आते हैं, कितनों को हम देख भी नहीं पाते, किसको देखो वही व्हाट्सएप पर। आप कितना अधिक परमेश्वर के वचन में समय दे रहे हैं, कितना अधिक आप घुटनों के बल प्रार्थना कर पा रहे हैं, कितना अधिक आप कुछ कर पा रहे हैं। और कई बार लोगों को भ्रम में भी ले जाते हैं, हमें साधना है परमेश्वर का वचन अपने जीवन में उतारना है, जब तक वो नहीं होगा हमारे जीवन में निर्दोषता नहीं आएगी। और इसलिए ये क्षण है, वो कह रहा है तब आगे चल के एक पारिवारिक है, सामाजिक, एक ही पत्नी का पति हो। अब आश्चर्य लगता है क्यों पौलुस बार बार परिवार के बारे में सबसे ज्यादा बात कर रहा है, बहुत गंभीर है। एक तो उसका हिस्टोरिकल कारण था, हिस्टोरिकल कारण यह था कि रोमी शासन में उस समय रोमी राज्य ने लोगों को वहां अनुमति दी हुई थी उस पीरियड में कि वो एक से ज्यादा विवाह कर सकते थे, और इसीलिए पौलुस ने बार बार इस विषय को छुआ है। जब आप आगे पढ़ेंगे हम जाएंगे तो पौलुस कहता है उन विधवाओं को जो एक ही पति की पत्नी रही हो उनको छूता है, उस समय उनके अनुमति मिली थी, और अनुमति का कारण कई लोग एक पत्नी के अलावा कई पत्नियों को अपने पास रखते थे और ये जीवन अच्छा नहीं था उनके लिए। और बाइबल स्पष्ट रूप से बार बार इस बात को सिखाती है, एक स्त्री एक पुरुष, एक पत्नी एक पति, ये बाइबल स्पष्ट रूप से बताती है, और उसके लिए खड़ा होना है, ये परमेश्वर के वचन का आदर करना है, ये मानना है, ये हमें देखना है, इस बात को समझना है कि किस रीति से हम परमेश्वर के वचन का आदर करते हैं। तब पौलुस क्या कहता है, अब क्या कह रहा है, एक ही पत्नी का पति क्यों, आगे चल करके चार पद में, अब ये पारिवारिक स्थिति है जिसको हम कह देंगे ना केवल आत्मिक है सामाजिक है, लेकिन नैतिक है पर सामाजिक में, कि समाज मेरे जीवन को मेरे परिवार को कैसे देख रहा है। चार पद में, वो घर का अच्छा प्रबंध करता हो, डीकन्स के लिए भी और एल्डर्स के लिए भी यह शब्द चार बार आया है, प्रबंध करता हो। पांचवें पद में, यदि व्यक्ति अपने घर का प्रबंध करना ना जाने, ठीक है, फिर पांचवें पद में, पांचवें पद फिर कलीसिया की देखभाल कैसे प्रबंध करेगा, फिर उसके बाद आगे चल करके फिर वो करता है बारहवें पद में, बाल बच्चों का तथा परिवार का अच्छा प्रबंध हो, प्रबंधक को बार बार क्यों, अर्थात मैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, एक मैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक पुरुष की जिम्मेदारी क्या है, एक पुरुष की जिम्मेदारी अपने घर का अच्छा प्रबंध करना, क्या उसके परिवार में परमेश्वर का वचन स्थान लेता है, क्या उसका स्वयं का जीवन अनुशासित है, क्या उसके परिवार में बच्चों के साथ बैठकर वो डिवोशन या प्रार्थना की वेदी उसने बनाई है, क्या वो बच्चों को अच्छी शिक्षा देता है, क्या वो परिश्रम करके अपने घर की आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है, मेहनत कर रहा है, परिश्रम कर रहा है अपने बच्चों के साथ, अपनी पत्नी के साथ उनकी आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है, क्या वो पुरुष ना केवल अपने मेहनत करके परिवार को संभाला, उनको अच्छी शिक्षा दे रहा है और उसके घर के लोग, उसके समाज के लोग, आसपास के लोग, ओह ये भाई जो है बहुत परिश्रमी, समाज क्या देख रहा है उसको, ये बहुत अपने घर की कैसी चिंता करता है, अपने घर की देखभाल कैसे करता है, समाज के लोग क्या कह रहे हैं, अरे घर में पड़ा रहता है, सुस्ती के साथ पड़ा रहता है, क्यों पड़ा रहता है, क्या साक्षी घर में। पति लोग अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं करते, ध्यान दीजिएगा, पति की जिम्मेदारी है अपने परिवार के लिए मेहनत करके कमाना, पहली बात मैं स्पष्ट बोल रहा हूं, ये पति की जिम्मेदारी, पति कमाते अच्छी बात है, प्रभु धन्यवाद हो उन बहनों के लिए जो मेहनत करते हैं, लेकिन कई सारे ऐसे पति हैं, मैं अपने कलीसिया में इस बात को चुनौती के रूप में देना चाहता हूं, चाहे पति को कुछ भी करना पड़े, मजदूरी क्यों ना करना पड़े, लेकिन उसको मेहनती होना चाहिए, यह परमेश्वर के वचन के अनुसार है, एक स्थल नहीं 10 स्थल है, किसी दिन और मैं इसको खुल के आपके साथ शेयर करूंगा, हमें सीखना है बाइबल क्या सिखाती है, हमारे पास सब कुछ ज्ञान हो लेकिन जो बाइबल कह रही है वो मैं करने के लिए तैयार नहीं हूं, तो मेरे पर हाय है, और इसलिए मैं समझना, यहां वो कह रहा है आगे चल के कहता है, वो घर का अच्छा प्रबंधक प्रबंध करता हो, अपने बाल बच्चों को ऐसे अनुशासन में रखता हो कि उसका सम्मान करें। मालूम है सम्मान दो प्रकार से होता है, सामने तो माता पिता के कई बच्चे सम्मान कर लेते हैं, लेकिन आपके पीठ के पीछे बच्चे आपके लिए क्या इमेज रखते हैं, आपके पीठ पीछे बच्चे आपके लिए क्या इमेज रखते हैं, क्या मेरा पापा सचमुच में हमारी चिंता करता है, क्या मेरे पापा मेरे लिए हमारे लिए मेहनत करता है, क्या हमारा पापा हमारे लिए ये करता है, अरे पापा तो कुछ नहीं करते, हम मांगते हैं कुछ नहीं करते, अब ये मतलब नहीं कि हम उसके लिए पागल बन दीवान बने, मतलब बच्चों की हर एक आवश्यकता पूरी करें, लेकिन माता पिता में के परिवार में पुरुषों की जिम्मेदारी, भाई लोगों ये सचमुच में ये आपके लिए खुला संदेश है परमेश्वर का वचन, और परिश्रमी होइए, मेहनती होइए, आप अपने परिवार को ऐसे संभालिए कि आपकी पत्नी और आपके बच्चे और समाज आपको देखकर गर्व हो सके, आप सम्मानित हो सके, इस बात को ध्यान रखिए, ये परमेश्वर का वचन कहता, मैं नहीं कह रहा, मनुष्य नहीं कह रहा, ये परमेश्वर का वचन कह रहा, और इसलिए बार बार वो कह रहा है वो अच्छी तरह देखभाल, तब आगे चलकर फिर वो कहता है पद को आगे, प्रबंध करता हो, अपने बच्चों को अनुशासन में रखता हो, उसका सम्मान। पांच पद में, यदि कोई व्यक्ति अपने ही घर का प्रबंध करना नहीं जानता तो परमेश्वर की कलीसिया की देखभाल कैसे करेगा। शुरुआत का ट्रेनिंग कहां है, ट्रेनिंग घर में, परिश्रम घर में, आप घर का पैसा कैसे मैनेज करते हैं, आप घर का समय कैसे मैनेज करते हैं, आप घर के लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, पत्नी को खूब पीट रहे हैं, पैसा मिला उसका हाथ से छीन ले रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, जो अपने घर को नहीं संभालता, आप अपनी पत्नी अपने बच्चों के साथ कैसे व्यवहार करें, ये वचन बाइबल की शिक्षा है और हमें समझना है।
आपको नीचा करने के लिए नहीं है, आपको चिताने के लिए है, आपको सावधान करने के लिए, आपको सोचने के लिए, ताकि आप सोचें परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, क्या मैं उस वचन के दायरे में अपने आप को रख पा रहा हूं, ये सोचना है। और वो कह रहा है घर का बच्चा अच्छा, वो चेला नया चेला ना हो, क्यों नया चेला ना हो, उसको पहले अधीनता में रहना है, अधीनता में रहकर आगे बढ़ना है, सीखना है, दूसरों का आदर करना है, सम्मान करना है, अनुशासन को स्वीकार करना है। अधीनता में रहना बहुत मुश्किल होता है, अनुशासन में रहना बहुत मुश्किल रहता है, हमारा मानवीय स्वभाव है, कह रहा है इस तरह से कहीं वो अहंकार में पढ़कर हो जाए, लेकिन तब आगे चल के फिर वो क्या कह रहा है, फिर से निर्दोष हो लेकिन कुछ गुण ऐसे हैं, वो कह रहा है ये क्या गुण होने चाहिए, दूसरे पद में सैमी समझदार सामान्य अतिथि सत्कार करने वाला शिक्षा देने, वो कह रहा है शिक्षा देने में निपुण हो, शिक्षा देने में निपुण, ठीक है, वो कह रहा है पौलुस कहता है सैमी हो अर्थात धीरज रखना उसके अंदर पाया जाए, समझदार हो, क्या मतलब समझदार, कहां उसको बोलना है, कहां उसको शांत रहना है, کاش تو کس بات کو سہنا ہے، کس بات کو سمجھانا ہے، سمجھدار ہو، سمجھ کے ساتھ بولنا ہے، سمجھ کے ساتھ نرنے لینا ہے، سمجھ کے ساتھ آگے بڑھنا ہے، سمجھ کے ساتھ کار کرنا ہے، سمجھ کے ساتھ سنبھالنا ہے، سمماننی ہو۔ میرے کو دیکھ کر لوگ کیا کہیں گے، کیا کہتے ہیں، آپ کو دیکھ کر آپ کو کیا کہتے ہیں، کس طرح سمانتے ہیں۔ اتیتھی ستکار کرنے والا، نہ کیول اتیتھی ستکار لینے والا لیکن کرنے والا۔ میں بار بار کلیسے کے لوگوں کو انکریج کرتا ہوں، ٹھیک ہے پربھو دھنیواد ہو آپ ہم لوگوں کو بلا لیتے ہیں، لیکن کبھی آپ نے ایک سال ہو گیا، کبھی آپ نے کسی دوسرے گاؤں کے پریوار کو نیا بلایا؟ کلیسے بہت ہرشد بھیا تھے پچھلے دنوں میں، انہوں نے شروع کرا تھا، لیکن کام بڑھتا گیا، لیکن وہ اچھا۔ کئی بار ہمیں اپنے پریوار میں ایسے لوگ کرسمس آ رہا ہے، آپ تیاری کر، کیا تیاری کر، آپ کی لسٹ میں کیا، میرے کو آفیسر کو دینا ہے، ٹیچر کو دینا ہے، ماسٹر کو دینا ہے، دینا ہے، بڑے بڑے لوگ کی کیا لسٹ بن جائے گی، کیا چھوٹی لسٹ، کیا اس کے بارے میں آگے چل کے کہہ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ہو، شکشا دینے میں نپوڑ میں بول چکا ہوں، لیکن کیا اس کے اندر نہ ہو، شرابی، مار پیٹ کرنے والا نہ ہو، نشہ کرنے والا۔ سامنے تو اچھا ہے، موقع ملا پتری بھی چھٹی ہے، رات میں پیتے اور چھٹا سویا، کوئی بات اللہ نہیں، وہ پیتے اور چھٹا سویا نہیں، کچھ پیتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے، پورے محلے کو کھاتے ہیں، گھر کو کھاتے ہیں، لیکن کچھ پیتے ہیں برباد کرنا۔ پرمیشور کا وچن کہتا ہے تمہاری دیہ پوتر آتما کا مندر، جو اس کو ناش کرے گا میں اس کو ناش کروں۔ ابھی آپ میٹنگ چل رہی ہے، بہت بہت لوگ آئے تھے، سیوک پاس کر وہاں پر ایک ڈبیا رکھی ہوئی، لیکن جو اس میں کیا دنیا نہیں ہے باہر، وہ جو ہمارے موٹر ہے، موٹر کا جان چیز ہے وہاں رکھی ہوئی، وہ ڈبیا کسی نے لا کے مجھے دی، وہ ڈبیا کہ انکل یہ واش روم میں ملی ہے لا کے۔ میں نے پوچھا کسی کا کچھ ہو گیا ہے، کسی بھیا کچھ کھویا ہے، مسالے کی ڈبیا یہاں لے کر آئے پرمیشور کے وچن کی شکشا بتا۔ میرے پیو پرمیشور پرمیشور سے پرارتھنا کیجیے، کوئی بھی ایسی بری عادت نہیں ہے جو پرمیشور اس کو نہ چھڑائے۔ یدی آپ کے اندر آنسو نہیں ہے، یدی آپ کے اندر پرارتھنا کا بوجھ نہیں ہے، یدی آپ کے اندر خود اپنے جیون کو لے کے پیڑا نہیں اتپن ہوتی، ویدنا اتپن ہوتی، آپ نہیں معلوم میرے درمیان اس کے لیے میں آج بھی رو رہا ہوں، نشہ نہیں کرتا، لیکن ہر ایک منوش کے اندر کوئی نہ کوئی نشہ اور میں جانتا ہوں، پر میں اور ادھک سے دونوں چاہتا ہوں اور ادھک پر، لیکن میں نہیں جانتا میرے آس پاس میرے پھر کتنا ہمارا کرا کہہ رہا ہے مار پیٹ کرنے والا نہ ہو۔ جب دیکھو بچوں کو مارنا ہے لیکن کیسے مارنا ہے، ہم نے غلطی کری، میں بار بار کھڑا ہوں کہ بولتا ہوں، اس سمے جب ہمارے بچے چھوٹے چھوٹے تھے ہم نے ان کے ساتھ آدر کیا، کئی بار بچوں کے ساتھ ہمیں اتنا دھیان نہیں تھا، آج میں سوچ رہا ہوں، لیکن بچوں کو کیسے کرنا، بچوں کو کبھی شاپ مت دیجیے، مر جاتا تو اچھا، جب تک پیدا نہیں ہوتا تھا ہے پربھو تو دینے رہا دینے رہا دینے رہا، آج پیدا ہو گیا تو مر جاتا تو غلط نہیں، تو کا استعمال کرنا، یہ سیکھنا ہے، سیکھنا ہے پرمیشور کو۔ جب میں کیا سیکھا، ہمیں ایک اچھے پریوار کو سمجھانا، مار پیٹ کس کہیں بھی دیکھو لڑ گئے، جہاں دیکھو لڑ گئے، गलत कह रहा ये ना हो, परंतु आगे चल के वो क्या कहता है, मारपीट करने वाला ना हो, परंतु नम्र हो, झगड़ालू और धन का लोभी ना हो। चार चीजें कहना हो, शराबी ना हो, मारपीट ना हो, करने वाला झगड़ालू ना, फिर झगड़ालू ना, मारपीट और झगड़ा और धन का लोभी ना हो। धन का लोभी का मतलब क्या है भाई? लोभ नहीं करता हूं, इससे मुझे काम करने की जरूरत नहीं, गलत है, ये नहीं कहना। अगर आप काम नहीं करने तैयार होते हैं, घर पे बैठे थे, तो आप आलसी हैं, सुस्त हैं, आप परमेश्वर के वचन को जानते हैं। बाइबल कहती है जो व्यक्ति काम ना करे खाने ना पाए। अदन की बाटियों में सबसे पहले परमेश्वर ने मनुष्य को काम दिया, और एक पुरुष की जिम्मेदारी है जो परिश्रम करे। इसलिए कई बार होता है, अरे हम काम करके, गलत है, शैतान ने आपके दिमाग को भ्रष्ट कर दिया है। लालच का मतलब क्या है, लोभी का मतलब क्या है? जो प्रभु को देना है प्रभु को देने के तैयार नहीं है, संचालन नहीं करते, लेकिन दूसरों की मदद करने तैयार नहीं। एक लोभी व्यक्ति को कुछ खर्चा देना चाहिए वो नहीं देगा, उसको पहले अपने खर्चे की लिस्ट दिखाई देगा। पहला स्थान परमेश्वर होना चाहिए। अभी मैं किसी से बात कर रहा था, तीन चीजें परमेश्वर के धन के अनुसार के लिए। पहली चीज, जब आपको जो कुछ मिलता है प्रभु का धन्यवाद कीजिए, प्रभु ने जीवन दिया, स्वास्थ्य दिया, आशीष दी, सहायता की, पहले परमेश्वर का हिस्सा निकालिए। चाहे जितना भी होता है उसे मत सोचिए, वो करें, वो प्रभु के, क्योंकि प्रभु पर, प्रभु ने आप पर अनुग्रह किया और आप उस पर विश्वास करते हैं, आप उसके प्रति कृतज्ञ हैं, आप लोभी नहीं है, और उसका निकाल के फिर कुछ कुछ ना कुछ अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए सेव करिए, ज्यादा नहीं, तब उसके बाद अपना बजट बना के खर्चा करिए। ये बजटिंग में आता है, ये सीखते हैं, सीखना पड़ता है, इस बात को करना है। तब आगे क्या कह रहा है, वो कहता है आगे कह रहा, अगर ये चीजें हैं वो घर, तब वो कहता है घर का ये व्यक्ति जो तीसरे और चौथे पद के अनुसार है वही व्यक्ति घर का अच्छा प्रबंधन करता है, वही व्यक्ति घर का अच्छा प्रबंधन। अगर तीसरे चौथे पद के अनुसार आपके अंदर नहीं है, मेरे और आपके अंदर नहीं, तो हम घर का अच्छा प्रबंधन नहीं कर पाएंगे, स्पष्ट रूप से कहता है। तब आगे चल करके ये इस बात को कहते हैं, तो ये कुछ शिक्षा जीवन है जो स्पिरिचुअल है, निर्दोषता में बढ़ना है, परमेश्वर के पढ़ना है, वचन की शिक्षा में पढ़ना है, ये हमारी आत्मिक जिम्मेदारी है। इसके जब शिक्षा जब तक नहीं दे पाएंगे, जब तक हम स्वयं शिक्षा को नहीं प्राप्त करेंगे, जब तक स्वयं हम मेहनत नहीं करेंगे, वो मेरे प्रियो पास्टर दो प्रकार के पास्टर, एक तो परमेश्वर के वचन की सेवा करने के लिए वचन की तैयारी करने में, एक दूसरे से आजकल यूट्यूब पर बनाने में। एक बार आप और भाई फिलिप और एक भाई और किसी जगह पे, वहां पर एक भाई हमारा काम कर रहा है, हम अचानक बिना बताए वहां चले, और उसने संडे को प्रचार किया, संडे को प्रचार किया और प्रचार, ठीक है। भाई फिलिप ने एकदम से मुझसे कहा, अंकल ये तो मैसेज बनाने वाला है, मैं तो इतना जानता हूं। और तब उस भाई से कहा, भाई बुलाया उसको, आपने बहुत अच्छा प्रचार किया, कैसे आप बहुत मेहनत से तैयार करता हूँ, आदि प्रचार करता है। भाई फिलिप ने कहा, या आपने सामने ही होटल में बोलते थे, वो सामने ही क्या था, और वो गया भाई फिलिप गया, और फिलिप ने वो प्रिंट आउट निकाल कर दिया भाई। तब उसकी पत्नी कह लगी, कल बहुत ये था वो था, अगर वेस्ट थे तो क्यों नहीं पहले बता। बहुत सारे प्रचारकों का क्या नाम है, मैसेज सुनता हूँ, बुक्स पढ़ता हूँ, ये सच अब दिखते हैं लोगों, लेकिन सब आप कभी नहीं करो, कभी नहीं करो, जैसा सुन लिया उसको आगे होगा, ऐसा नहीं करो, जितने के लिए हमें अपॉर्चुनिटी देनी पड़ती है, स्टडी बुक्स है उसमें जाना बैंक देते करते हैं, लेकिन वो बोल मेरे सेवा में जिम्मेदार। तब वो आगे चल के तब साते पद कलीसिया के बाहर के लोगों में वो सुनामी हो, कहीं ऐसा ना हो कि किसी दोष में पढ़कर वो शैतान के फंदे में फंस जाए। विश्वास ना जरूर मेरे प्रियो जब हमें आते हैं कुछ बात हमें ना कर पाते हैं लेकिन किन लोगों से उन लोगों से जो प्रभु को नहीं जानते वो कहेंगे केवल और वो ये नहीं कहेंगे चोर है वो नहीं कहेंगे लुटेरा है वो नहीं कहेंगे शराबी है वो ये नहीं कहेंगे अगर आप शराब नहीं पीते वो नहीं कहेंगे तब आपको इस तरह से जोड़ केवल ही कहेंगे कह रहे इसने धर्म बदल इसने अपने धर्म को धर्म बदल दिया भ्रष्ट हो या विदेशी धर्म को इस तरह की बातें कहेंगे लेकिन वो आपके जीवन को जो बदला हुआ जीवन है उसको देख करके आप उनका विवेक जो कह रहे हैं अगर झूठ मोट में बोले काटे गम कर प्रभु के पीछे चलने के बाद आप वो लोग बदनाम दूसरी तरह से कर सकते ये लेकिन आपके जीवन को देख करके आपको आस पास के लोग आपके नाम को अच्छे से या पड़ोस में रहते आपकी साक्षी ये मिलनसार है आज मिशन बारह मक्के में थे उस समय लोग बहुत व्यस्त उन्होंने अक्का पानी हमारा बंद कर हमारे हमें ऐसे आस पास सारी कॉलोनी सारी शादी हो रही हमारे बरांडे को यूज कर रहे हैं हमारे बरांडे को यूज कर रहे हैं हमारे हैंडपंप से पानी ले रहे हैं सब कुछ कर रहे मांग कर लिया मैं कटी के लिए लेकिन अपने हाथ दावत नहीं आ रहा सब मोहल्ला दावत में अम्बा मौजूद लेकिन परमेश्वर का अजीत भाई समय 8-9 साल समय छत पर से गिरे छत पर अभी भी छत पर जब उन्होंने लगे तो छत और उन्होंने उसको कभी कहा तब यही लोग पलट आपने किसी को तो लेकिन आपके जीवन में अगर सच्चाई आपके जीवन में सच्चाई आपका परिवार सुंदर बन रहा है लोग आपके परिवार को देख रहे हैं एक पति अपनी पत्नी की और बच्चों की चिंता कर रहा है आप अपनी देखभाल कर रहे हैं वो आपका समाज वो आपकी सोसाइटी आपका सम्मान कर रहे हैं लेकिन आप खुद सम्मान वो अपने होते हैं और खुद आप अपने सम्मान कर रहे हैं आप अपने सम्मान खुद बना रहे हैं और अपने क्या मेरे क्या मेरे कहता है ताकि और वो लेकिन वो क्या कह रहा है कहीं ऐसा ना हो अगर आपका नाम सुनामी नहीं है आपके दिशा के लिए कहीं ऐसा ना हो धीरे 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 वही परिस्थितियां वही चार आपको ऐसा कर दें कि आपका जीवन किसी प्रकार से बुराई में बदल जाए और मेरे प्रियो आस पास क्या चाहिए एक मसीह के लिए क्या चाहिए ये किसी ना किसी रीत से कोई ना कोई बुराई बन पाए ताकि उनको उपयोग ताकि उनको जाना और इसलिए मुझे और आपको ये एल्डर्स के बारे में डीकन्स के बारे में भी लेकिन एक चीज को मैं लाना चाहूंगा जो 11वें पद है वही चीज बनाई गई है लगभग निर्मल विवेक है रक्षित रखने का है धर्म सेवक की है लेकिन उसमें मैंने कहा कि केवल उसमें फर्क यह कि इसमें यह है 15 चीजों की सूची है जो 3-2 पद से लेकर या मतलब पहले पद से लेकर 7 पद तक एक एल्डर के लिए घर में जाकर अगर आपको टाइम मिलेगा तो बनाएंगे 15 चीज की सूची है जो 7 पद में तब आगे चलकर लेकिन 11 पद में प्रकार केवल एक पद आया इस रूप में इसी प्रकार स्त्रियां भी सम्मानीय हो द्वेषपूर्ण हो गपशप करने वाली ना हो परंतु संयमी तथा सब बातों में विश्वास सब बातों में विश्वास अपने परिवार में अपने पति के प्रति विश्वास है अपने बच्चों के प्रति विश्वास पैसे के प्रति विश्वास साक्षी के प्रति विश्वास बाहर के प्रति विश्वास सब बातों में सब पतों में चाहे वो स्कूल हो चाहे वो कॉलेज हो वर्कशॉप हो चाहे वो हॉस्पिटल हो चाहे वो कारखाना हो समाज हो चाहे गृहिणी हो जो घर में काम करती घर में रहती सब बातों उसके लिए आपके कथन विश्वास योग हो आपके कार्य विश्वास योग हो आपका व्यवहार विश्वास योग हो आपका प्रेम विश्वास योग हो आपका स्वभाव विश्वास हो आपके चरित्र विश्वास क्यों? ये स्त्री कौन है? ये उनकी स्त्री है जो सेवा में है। जब वो एल्डर्स है तो अगर एल्डर और डीकन की पत्नी के अंदर ये गुण नहीं है तो वो अपने पति की सेवा पर उंगली उठाने का काम लोग इस बात को, क्योंकि वो अपने पति और इसलिए उनकी पत्नी जिम्मेदारी है कि वो पतियों के साथ से खड़े होते लोग कहने के, अरे ये भाई तो बहुत अच्छा है, ये तो अच्छी सेवा कर रहा है, लेकिन इसकी पत्नी को इसलिए पत्नियों की जो भाई और बहन से भाई लोग खास करते हैं उनकी जिम्मेदारी किस वो अपने पत्नियों को वचन के लिए लाई भूखा होना चाहिए, उनके जीवन से दिखाई देना चाहिए कि वो आत्मिक है, उनकी बातें आत्मिक है। कह रहा है यहाँ पर, क्या कह रहा है, वो व्यर्थ गपशप करने वाली ना हो, जहां मौका मिला आत्मिक बातें उनके मुंह से नहीं निकलती। माफ करियो बहन, तुमने कपड़ा कहां से बनाया, ये साड़ी कहां से, ये स्वेटर कहां से लिया, ये फलाना कहां से लिया, यही ज्यादा चर्चा का विषय बन जाता। गलत है ये, गलत है। हाँ ठीक है, उसका भी समय है, उसका भी समय है, उसके लिए मैं निंदा नहीं करता, ठीक है, बात की जाती है। लेकिन अगर केवल वही चीज है, किसी के आत्मिक जीवन के बारे में चिंता नहीं है, प्रार्थना कर रही नहीं कर रही, तुम आज बाइबल में क्या पढ़ रहे, क्या तुम तुम्हारे परिवार में पारिवारिक प्रार्थना करते नहीं करते, तुम अपने बच्चों से बाइबल अध्ययन करते नहीं करते, क्या उनको सिखाते। अगर आपके अंदर आत्मिक बातों की चिंता नहीं है दूसरों के लिए जिनसे आप मिलती है, केवल आप संसारी बातें करती है, तो फिर आप व्यस्त करने वाली और समय तथा बातों में सब प्रभु में साधक है। लेकिन ये उनके लिए भी कह रहा है, कुछ पहले भी जैसे फीवे थी, रूमियों उसके 16 अध्याय पहले पढ़ते, फीवे कलीसिया में सेविक कलीसिया रहने थी जिन्होंने सेवा की, पॉलिस की सेवा के साथ सेवा की। अब ये अपने प्रचार हम नहीं करते, लेकिन जैसे पिछली बार करता उनकी सेवा का बहुत मना ही करता, बहुत सारा था। अब यहाँ पर किचन है, किचन में कितना चाह हमारे जवान बहने कभी कभी पहले शुरू में करा भी था कुछ पहले, ठीक है इस संडे को हम करेंगे, बीच में कभी कभी मैंने उनका अच्छा ठीक है हम यहाँ पर जरिए ठीक करेंगे या इसको बनाएंगे या इसको बनाएंगे, अभी पुलपिट में ये चीज है चादरें मैं साफ कहता हूँ, कितने लोग देखते हैं किस बैंक के मन में आया ठीक है मैं दो इसके बना के दे। बहनों का छोटी छोटी चीज है, बहनों को देखना चाहिए किस प्रकार से हम परमेश्वर के भवन में हम खुद और अधिक सुशोभित करते हैं, किस प्रकार से हम दूसरों की सहायता करते हैं, हमारे बीच में कोई गरीब बच्ची आ रही है, गरीब बच्चा आ रहा है, कोई बहन आ रहा है, किसकी हम उसकी सहायता करते हैं, ये काम है, सोचना है, चाहे वो सेवक की पत्नी चाहे जो स्त्री हो, देखना हमें। और इस प्रकार से परमेश्वर वचन सिखाता है। तो इन 16 पद में ये एक ही पद है, क्योंकि इससे पहले पौलुस दूसरे अध्याय में बहुत कुछ बहनों के बारे में समझा चुका था जो पिछले अध्याय को देख चुके। अब आगे पढ़िए क्या कहता है, धर्म संकल्प के बारे में, वो भी है पत्नी एक ही पत्नी का पति हो, बाल बच्चों परिवार का अच्छा प्रबंधक हो, क्योंकि जिन्होंने धर्म से उनके कार्य अच्छी तरह से पूरा किया है वे अपने लिए तो एक उच्च सम्मान तथा उस विश्वास से जो मसीह यीशु में दृढ़ निश्चय प्राप्त करते हैं, उस विश्वास जो मसीह यीशु में है, वो सुसमाचार जो आपके अंदर बोया गया है, डाला गया है, वो यीशु जो सुसमाचार का आधार है। तब 14 पद से लेकर के जो 16 पद तक है इसमें एक वो कंक्लूड करता है, उसको समाप्त करता है, लेकिन समाप्त करने के पहले वो 14 पद में एक बात कहता है और 16 पद में रीजन देता है, कारण देता है। 14 पद में क्या बात बोलता है, 14 पद में, मैं ये आशा करते हुए कि तुम्हारे पास शीघ्र आऊंगा तुम्हें ये बात लिख रहा हूँ, ये अभिलाषा है कि उनके पास जाए, उनसे मिले, उनसे बातचीत करे। वो क्या कह रहा है, कलीसिया क्या है, कलीसिया के भेद को समझो, ये 14-15 पद मैं आऊंगा तो मैं बताऊंगा, लेकिन तुम्हें कलीसिया के भेद को समझना है, कलीसिया क्या है। तब वो इसमें 14-15 पद में स्पष्ट कहता है चार चीजें हैं जो उसमें कलीसिया के बारे में होता है, क्या है वो कहता है? कहता है मेरा आने विलंब हो तो मैं मानूंगा परमेश्वर के परिवार में, जीवित परमेश्वर की कलीसिया सत्य का स्तंभ तथा आधार है, तेरा व्यवहार कैसा? क्या चीज है परमेश्वर का परिवार, जीवित परमेश्वर की कलीसिया सत्य का स्तंभ आधार फाउंडेशन, ये चार चीजें हैं। कह रहा है क्यों चार बातों कह रहा है? कलीसिया एक परमेश्वर का परिवार, एक परिवार में 10 और 15 जन रहते हैं, अलग अलग उनका स्वभाव होता है, अलग अलग इच्छाएं होती हैं, अलग अलग उनका नेचर होता है, अलग अलग उनका टेम्परामेंट होता है, अलग तरह के, लेकिन कलीसिया का जो परिवार का जो मुखिया है वो सबको लेकर बांध करके ले जाता है। परिवार में विभिन्न प्रकार से विभिन्न तरह से विभिन्न प्रार्थना कर विभिन्न तब आगे चल कर क्या कहता है? वो परिवार सत्य का स्तंभ, वो स्तंभ खंभा जिस खंभे में सत्य का स्तंभ है, जिस खंभे पे दीवार छत खड़ी रहती है, अगर खंभा मजबूत ना हो तो छत क्या हो जाएगी? और सत्य का खंभा है कलीसिया, दुनिया चल जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, कलीसिया नहीं चलेगी, कलीसिया कभी नाश नहीं होगी, अधोलोक के फाटक इस पर प्रबल नहीं होने पाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह के मुख से निकले हुए शब्द है मती उसके 18 अध्याय में, सॉरी 16 अध्याय में, ये परमेश्वर कहता है कि और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होने पाए। सच दुनिया का अंत हो जाएगा लेकिन कलीसिया का अंत नहीं होगा। क्यों क्यों कलीसिया कहां चली जाएगी? कलीसिया मैं और आप जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, जिन्होंने अपने पापों की क्षमा को प्राप्त किया है, जो उसके आने की बाट जोते हैं, जो उसके दूत आने की प्रतीक्षा करते हैं, जिनका वो विश्वास है यीशु मसीह आएगा, और आप उस कलीसिया के अंग बन चुके हैं जो विश्व आपकी कलीसिया है। सारी कलीसिया की बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ऐसा है तो जब प्रभु यीशु मसीह आएगा मैं और आप उसके साथ पृथ्वी में सब कुछ समाप्त हो जाएगा, हम नए स्थान पे वास करेंगे। ये कलीसिया सत्य मतलब वो कहता है न क्यों लिए लेकिन आधार है। और तब 16 पद में क्यों कैसे कलीसिया बन गई, इस कलीसिया को क्या करना पड़ा, परमेश्वर को क्या करना पड़ा, और इसमें वो बातें छिपी हैं जो सच में इस कलीसिया की स्थापना के लिए, जिस कलीसिया में परमेश्वर ने मुझे और आपको सेवा करने का अधिकार दिया है, या सेवा करने के लिए चुना है, या सेवा करने के लिए मेरी और आपकी इच्छा है, मनसा है, वो ये कलीसिया है जिस कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह ने बनाया। और कैसे बनाया वो 16 अध्याय 16 पद, उसके लिए क्या करा उसने, और मेरे पियो वो मूल्यवान है, उसके लिए कीमत चुकाई है, प्रभु यीशु मसीह ने कुछ किया है। और 16 पद में तब कहता है और निस्संदेह भक्ति का भेद बड़ा गंभीर है। सचमुच में मुश्किल है, ये गंभीर बात है, ये भेद है, दिस इज अ सीक्रेट, ये हम आसानी से नहीं समझ सकते, आसानी से समझते। इसीलिए पौलुस एफिसियों में लिखते हुए परिवार को पति पत्नी के संबंध के द्वारा समझाता है, जैसे वो भेद है उसी तरह से किसी दुल्हन बताते हुए तब कहता है क्या हुआ, वो जो शरीर में होकर प्रकट हुआ वो यौना का पहला दर्शन था, और वो देहधारी हुआ और मनुष्य के बीच में मेरे और आपके बीच में उसने डेरा किया, और हमने ऐसी महिमा देखी जैसे इकलौते पुत्र के। यहाँ यीशु मसीह ने क्या किया, इस कलीसिया की स्थापना के लिए प्रभु यीशु मसीह शरीर में देह में होकर इस पृथ्वी पर आ गया, प्रकट हुआ, आत्मा द्वारा धर्मी ठहराया गया। कैसे धर्मी ठहराया गया? मारा गया, गाड़ा गया, लेकिन फिर भी जी उठा, वो मेरे प्रियो और सच में। और तब उसके बाद जब वो जी उठा, वो आत्मा के द्वारा जलाया गया, परमेश्वर के आत्मा द्वारा, और तब उसको स्वर्गदूतों ने देखा, स्वर्गदूतों ने वो दिखाई दिया, गैर यहूदियों में उसका प्रचार हुआ। उसके बाद क्या होने लगा? उसका प्रचार हुआ यीशु जी उठा है, यीशु जी उठा है, यीशु ही मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे जी उठा, यीशु मसीह वो प्रभु है जो मानव जाति के लिए संसार में आया, उसने अपने आप को बलिदान किया, तुम्हारे पापों का मूल्य चुका दिया गया है, तुम्हारे पापों की कीमत चुका दी गई है, उस पर यीशु पर विश्वास करो, उस पर विश्वास करो, उससे जीवन पाओ। ओ ये प्रचार किया गया और प्रेरितों ने क्या खड़े होकर प्रचार किया, जिस यीशु को तुमने क्रूस पर चढ़वाकर मारा डाला था वो यीशु को परमेश्वर पिता ने तीसरे दिन जिला उठाया, क्योंकि असंभव था कि मृत्यु उसको अपने वश में। कितने उत्साह की बात है, कितनी महत्वपूर्ण बात है। क्या आपने गंभीरता से बात पर विचार किया, क्या गंभीरता से इसको सोचा है? ये कलीसिया है जिसके लिए परमेश्वर ने सोचा। और तब उसके बाद आगे चलकर कहता है कि प्रचार उस पर विश्वास किया गया और महिमा में ऊपर उठा गया। लोगों ने उसको देख लिया, वो यीशु जी उठा है, यीशु जी उठा है, और उस पर विश्वास किया और तब वो लोगों के सामने ऊपर उठा। प्रेत काम उसका पहला अध्याय 11 पद, अगर पहले से 11 पद पढ़ेंगे 18 पद जीते दिखेंगे। और तब उसके बाद उसने अपने पवित्र आत्मा को डेल दिया और ताकि कलीसिया की स्थापना हुई और आग वो कलीसिया फैल गई और फैलती चली जाएगी। अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होने पाएंगे, कोई इस कलीसिया को बढ़ने से रोक नहीं पाएगा, चाहे कुछ भी हो, सतावनी आएगी, घटनाएं आएंगी, नियम बनेंगे, कुछ भी होगा, लेकिन कलीसिया नहीं रुकने पाएगी। ये प्रभु का काम है, परमेश्वर के वचन में लिखा है। तो एक प्रेरित काम उसके 5 अध्याय में 38-37 पद में, यदि मनुष्य का कार्य है तो रुक जाएगा, लेकिन परमेश्वर का काम है इसलिए कोई उसको रुक। ये परमेश्वर की कलीसिया है, मसीह ने अपने लहू से इसको खरीदा है, वो कीमती है, बहुमूल्य है, उसके त्याग से बनाई गई। ओ ये कलीसिया जो परमेश्वर का परिवार है, कितनी गंभीर बात है, कितना अधिक में और आप इस कलीसिया के प्रति गंभीर हैं। मेरे प्रियो, आपको इस कलीसिया का परमेश्वर ने सदस्य बनाया, आप अंग हैं, कितने अधिक आप इसमें गंभीर हैं, कितना अधिक आपके अंदर ये अभिलाषा है, ये कलीसिया जिस परिवार में मैं हूँ और अधिक पवित्र हो, और अधिक आगे बढ़े, और अधिक परमेश्वर के में हो और परमेश्वर के नाम का आदर मिले। मेरे प्रियो, और इस कलीसिया में ऐसी गंभीर सेवा के लिए परमेश्वर मनुष्य और इसलिए वो इस योग्यता की अपेक्षा, इसलिए वो इस प्रकार के जीवन की अपेक्षा, इसलिए इस प्रकार की साक्षी। मेरे प्रियो, भला है, अच्छा है जो इस बात के पीछे, लेकिन गली से करते परमेश्वर मेरी और आपके साथ जब इस कलीसिया के रह। और इसीलिए मेरे प्रियो, जब द्वार का दिन आता है, हम बोझ के साथ नहीं आनंद के साथ परमेश्वर घर में एक उत्सव मनाने के लिए पहले से तैयार होते हैं, पहले से तैयार। हम मैं अक्सर बोलता हूँ कि मसीहों के पास सबसे अधिक त्यौहार है, केवल ईस्टर गुड फ्राइडे नहीं है, केवल ईस्टर गुड ईस्टर को चले जाइए, गुड फ्राइडे को चले जाइए, और क्या नाम से क्रिसमस को चले जाइए, उस दिनों तो कलीसिया में पंडाल बना लिखेंगे, लेकिन हर इतवार मेरे और आपके लिए परमेश्वर ने उत्सव का दिन रखा। और आनंद से एक दिन पहले सोचता है कल हमें जाना है, प्रार्थना करनी, तैयार होना है, आगे बढ़ना है तो परमेश्वर के भवन में। इसीलिए भजन संहिता 122 में दाऊद कहता है 122:1 में, जब लोगों ने मुझसे कहा कि आओ हम यहोवा के भवन में चले, मेरा मन आनंदित हुआ। भजन संहिता 122:1 पर मेरा मन आनंदित हुआ। मेरे प्रियो, काश मेरा और आपका मन प्रत्येक संडे के लिए, प्रत्येक बुधवार के लिए, या जब भी कलीसिया इकट्ठी होती है प्रार्थना के लिए, बाइबल अध्ययन के लिए, मेरा और आपका मन ललायित हो, प्रतीक्षा में रहे, ओ ये दिन परमेश्वर ने ठहराया है ताकि हम और वचन सीखें, संगति में पढ़े, आपस में एक दूसरे मिले, एक दूसरे प्रार्थना करें और हम ललायित होकर आगे बढ़ जाएं। सब कुछ खत्म हो जाएगा, कलीसिया नहीं खत्म होगा। मेरे प्रियो, ये मैं क्या मेरे और आपके वो कलीसिया की गंभीरता, क्या मेरे और आपके अंदर कलीसिया का रहस्य, क्या मेरे और आपके अंदर कलीसिया